इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं, देखो इस्लाम ने कितना प्यारा निज़ाम दिया, युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम वयहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम वयतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह चाहता है कि तुम पर इन तरीक़ों को वाज़े कर दे और इन्हीं तरीक़ों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुजरे वे नेक लोग करते थे। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने का इरादा करता है और वो अलीम भी है और दाना भी है। हाँ, अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, मगर जो लोग ख़ुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हैं, इसको हाईलाइट कर लें। अल्लज़ीना यत्तबिऊना शहवात, शहवत जो है ना, ये असल में ख़ानदानी ज़िंदगी को बिगाड़ती है। मर्द जब अपनी बीवी से हटकर दूसरी तरफ तवज्जो लेने लगे तब भी घर ख़राब होते हैं, और बीवियां जब दूसरों के साथ तकाबुल करके अब किसी और के साथ सोचने लग जाएँ तब भी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। इसलिए इस सारी चीज़ के लिए इंसान अपने दिल को कहाँ रखे, ख्वाहिश नफ्स से रोके, सब वो फिल्में बंद कर दें जो घरों में खूबसूरत चमकती दमकती हीरोइनों को लाती हैं, जिनको देख कर मर्दों को अपनी बीवियाँ अच्छी नहीं लगती, और वो तमाम सारे दरवाज़े बंद कर दीजिए जिससे आपकी बेटियों की नज़रें ख़राब हो रही हैं और उनको सीधे साधे लड़के और मर्द अच्छे नहीं लगते। ये मीडिया ने जितना ज़्यादा ख़ानदानी ज़िंदगी को बर्बाद किया है शायद इतना किसी ने किया हो ना। ये गंदी चीज़ें देखें ना बीवियों से गंदे तकाजे हों। आज भी असल घर जन्नत का वही घर है जिसका आप कहते हैं ना, मेरा घर मेरी जन्नत, वही है कि जिसमें शौहर और बीवी दोनों की नज़रें पाक हैं, दोनों अल्लाह के रस्तों में भाग रहे हैं, दोनों को इबादत का शौक़ है, दोनों को गम है कि हमारे बच्चे ठीक हो जाएं, हमारे मामले अच्छे हो जाएं, हम अपने हकूक़ बात पूरे करें। तो इसके लिए फिर कुछ ख्वाहिश वाले कंट्रोल करने पड़ेंगे। बचपन में हम बच्चों के हाथों में गेम्स दे देते हैं, चलो बेटे भी तुम ये देखो, शाबाश, थोड़ा सा बड़ा हुआ कार्टून देखो, चलो उसके बाद बच्चों वाली मूवीज़ दिखाओ, फिर उसके बाद बड़े होके वो कहते हैं बाकी बड़े हुए हैं तो हमें भी तो बड़ों वाली देखनी है। अब क्यों वो दरवाज़े खोलते हैं जिसके साथ जिससे आपने बाद में नहीं गुजरना। ये ना चाहते हुए गैर मारूफ तरीके से बच्चे को पता है कि बच्चे कार्टून देखते हैं, अम्मी अबू फिल्म देखते हैं, बच्चे ये देखते हैं तो दादी जो है वो ड्रामा देखती हैं। क्यों नहीं हम पाक करते अपने घरों को? क्या इस साल का रमज़ान हमारे घर को इन तमाम खुराफात से पाक नहीं कर सकता? क्या ज़रूरी है ये चैनल कहीं जादू के नाम पर तो कहीं टूने के नाम पर और कहीं छोटी डब्बियाँ और जादू की पुड़ियाँ बना के घरों में रखते हैं? एक एक बच्चे को आपका चैनल चेंज करना आता है, आपको पता है? मुझे नहीं आता होगा क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया बहुत अरसे से, लेकिन बच्चे कट करके आपको खोल के दे देंगे अगर आप उन्हें कभी कहें कि बेटा कोई चैनल लगाओ अच्छा है तो, कट कट करेंगे। अच्छी चीज़ें रखें घरों में, चीज़ें बुरी नहीं होती, लेकिन जब ये ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले हो जाते हैं तो फिर इंसान ना अल्लाह का रहता है ना बंदों का रहता है। युरीदुल्लाह युखफ्फिफ़ानकुम वखुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है। तुम्हारे बिल कितने कम हो जाएंगे, बिजली का बिल कितना कम होगा, तुम्हारे महीने के कितने खर्चे कम होंगे, कितनी हमने सोची छोटी छोटी चीज़ें घरों में रखी, इसके खर्चा उसका खर्चा, ये फलां नया चैनल है ये उसका, ये केबल का ये उसका, क्यों पूरी नहीं पड़ती? इसलिए कि ख्वाहिशात बहुत सारी हैं। अल्लाह कहते हैं तुम लाइट ज़िंदगी गुजारो, और आप फील करें जितना घर में मीडिया कम होगा उतने घर वाले करीब होंगे। जहाँ माँ बैठती सारे बच्चे वहीं आ जाते हैं, अब्बा बैठा है तो बच्चे वहाँ आ गए, बातें खाना पीना, चलो बाहर चलते हैं, चलो वॉक कर रहे हैं, चलो खेल लें, चलो बाहर जाके बैक यार्ड में जाके खेल लें, क्योंकि एंटरटेनमेंट करनी है। और ये मुसीबत एक ऐसी चीज़ हमारे घरों में बढ़ गई कि खाना भी खाते पता नहीं मुंह में डालना है कि किधर डालना है पता ही नहीं होता, नज़रें कहीं और लगी हुई हैं। याद रखिए, ये मैं कोई बातें तंज के लिए नहीं कह रही, अल्लाह ना करे मेरी ये आदत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसने कितना दूर किया। बीवी को दुख सुना रही है और मियाँ साहब के कान उधर लगे हुए, और मियाँ साहब बेचारे कोई बात कहना चाह रहे हैं, बीवी को समझाना चाह रहे हैं, बेगम साहबा की नज़रें जो है वो स्क्रीन पे लगी हुई हैं। और कहाँ रखते हैं हम अमूमन इन चीज़ों को? जल्ला की नमतें इस्तेमाल हो रही होती हैं, एन सर पे लगा के हम अपने कॉरिडोर्स में रखते हैं। मैंने देखा, कहना नहीं चाहती, लेकिन हमारे पाकिस्तान में घरों के जब लोग बताते हैं ना, चार बेडरूम है और एक टी वी लॉन्च है। टी वी लॉन्च का नाम के नहीं, टी वी को बुरा लफ्ज़ नहीं था, पहले बुरा लगता था जब तक अच्छे अच्छे चैनल्स नहीं आए थे माशाल्लाह, अब आगे हम टीवी बुरा नहीं है। लेकिन आप कभी सोचा सलात लॉन्च नहीं है हमारे घर में, नमाज का कमरा नहीं है, अजान रूम नहीं है, स्टडी रूम नहीं है, कुरान रूम नहीं है, लेकिन हमारे घरों में मीडिया रूम और न जाने क्या क्या रूम है। ये तो आप शुक्र कीजिए कि जो यूके में घर छोटे हैं, रियली यहाँ तो घर ज़रूरत के है ना। आप जाके अमेरिका में देखिए, मीडिया रूम है, इतने बड़े बड़े रूम होते हैं जितना ये घर है। मैंने खुद दर्श दिए हैं लोगों के मीडिया रूम्स में बैठ के, कि पीछे पूरी वॉल जो होती है ना, वो वाली वॉल होती है जिसको क्या बोलते हैं, हाँ सिनेमा वॉल कह ले उसको, कुछ कहते हैं वहाँ, प्रोजेक्टर होता है उस वॉल के अंदर खुद ब खुद। मुझे आज भी आंखों के सामने वो घर आ रहे हैं कि यदि दीन के लिए इस्तेमाल होते हैं तो क्या माहौल बन जाता है। इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन है टच सिस्टम के साथ, कहीं आपके एक्सरसाइज रूम में 70 किस्म की मशीनें घर में रखी हुई हैं, ये जिकोजी है, ये फलानी शोजी है, ये फलान, क्योंकि घर बड़े हैं और उसी में खोए रहेंगे सारा दिन। इसलिए ख्वाहिशों पे काबू डालें। अगर आप चाहते हैं आपके बंदे अल्लाह के बंदे भी बने, सॉरी आपके बच्चे अल्लाह के बंदे भी बने और आपकी भी सुने, तो यत्तबिउन शहवात का दरवाज़ा काटना पड़ेगा। अल्लाह कहते ज़िंदगी आसान रखो, फालतू पैसे दीन को दो, दीन तो मुफलिस कमजोर, इतना गरीब है तुम्हारा दीन और तुम अपनी ज़ात के ऊपर इतना लगाई जाते हो। फिर फरमाया अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, यहाँ यह आयत बड़ी ज़ुमानी है। जब नफ्स की बातें आएंगी, जहाँ खुराफात का जिक्र होगा, वहाँ माल के बातिल तरीक़ों का जिक्र होगा, और ऐसी ज़रूरतें फिर हलाल से पूरी होती भी नहीं है अमूमन। ए लोगो जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीक़ों से ना खाओ, लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी से, और अपने आप को कत्ल ना करो। इसको हाईलाइट कर लें, इस्लाम सुसाइड के ख़िलाफ़ है, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। जो इस्लाम दूसरे को नहीं मार सक मारने की इजाज़त देता, वो खुद को मारने की इजाज़त कहाँ देगा। फिर हदीस में आता है कि जो खुदकुशी के साथ मरेगा क़यामत तक, वो यही जुल्म अपने ऊपर उठाता रहेगा कि वो ये काम कर रहा है और उसकी जान नहीं निकलेगी। एक दफ़ा मरेगा फिर जिएगा, मरेगा फिर जिएगा, और इसके साथ ही साथ उसको ये अजाब मिलता रहेगा। अल्लाह ताला बचा के रखे। कितना बदबخت है वो शख्स जो दुनिया के गमों से घबरा कर जान ले ले और वहाँ के हमेशा के गम पा ले। अल्लाह ये क्यों कहता है, क्योंकि इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा, अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। यकीन मानो, दिल यकीन आ गया हमें, वाकई यकीन कर लीजिए कि अल्लाह हम पे बहुत मेहरबान है। जो शख्स जुल्म व ज़्यादती के साथ ऐसा करेगा, इसको ज़रूर हम आग में झोंकेंगे, और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। कागज़ों को आग में झोंकना हमारे लिए मुश्किल होता है, कोई मुश्किल नहीं है ना। अल्लाह के आगे इंसानों की क्या हैसियत है, अल्लाह सबको आग में झोंक देगा, अल्लाह को कोई मुश्किल नहीं लगेगा। करो क्या, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुन्हौना अन्हु, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करो जिनसे तुमको मना किया जा रहा है, तो तुम्हारी छोटी छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से साकित कर देंगे। ये अल्लाह की रहमत, तुम बड़ी बड़ी छोड़ो, छोटी छोटी मैं करवा दूंगा, और तुमको इज्जत की जगह पे दाखिल करेंगे। कबायर क्या हैं, जिस पे अल्लाह की पकड़, जिस पे हराम का लफ्ज, जिसके ऊपर हदें लगती हैं। और हदीस में अकबरुल कबायर में सूद, झूठ, जिना, माँ बाप की नाफरमानी, शिर्क, और इसी तरह से माले ना हक खाना, मैदान जंग से भागना, जिसको मैं आज के दौर में कहती हूँ दीन के कामों से भाग जाना, ये सारी चीज़ें बड़े बड़े गुनाहों में आती हैं। लिस्ट बनाएं, इमाम ज़ाहबी की एक बुक है अल कबायर के नाम पे, उन्होंने लिस्ट बनाई है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई एक लिस्ट नहीं दी। खुद सोचो कि क्या चीज़ तुम्हें बड़ी लगती है, और हर छोटा गुनाह बाद में बड़ा बन जाता है। बार बार छोटे गुनाह को करेंगे तो वो बड़ा गुनाह बन जाएगा। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा दिया है, इसकी तमन्ना न करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया इसके मुताबिक उनका हिस्सा है, और जो कुछ औरतों ने कमाया इसका हिस्सा है। ये कौन सी कमाई है, औरत की जॉब की बात हो रही है या आखरत की कमाई है? अल्लाह के हाँ आखरत के मामलों में औरत और मर्द बराबर हैं। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो नेकी औरत करेगी उसको उसका बदला मिलेगा, और जो नेकी मर्द करेगा उसको उसका बदला मिलेगा। हाँ अल्लाह से इसके फजल की दुआ मांगो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है। अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि तुम हर एक नेकी की कोशिश करो। वली कुल्लिन जालना मवाली मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक्रबून, और हमने हर उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए जो वालदैन और रिश्तेदार छोड़ें। अब रहे वो लोग जिनसे तुम्हारे अहदो पैमा हों, तो इनको इनका हिस्सा दो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगरान है। ये आयत विरासत से पहले की आयत है। लोग मरते हुए अपने किसी दोस्त के नाम पे अपनी जायदाद लगा जाते थे, काब नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ने हर एक को उसका हिस्सा दे दिया। अब आगे आयत आ रही है, अर्रिजालु कवामून अला निसा, मर्द औरतों पर कवाम हैं, इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। बस ख़त्म, मर्दों की जिम्मेदारियाँ इतनी हैं। अब देखिए सूरह बकरा से लेकर सूरह निसा तक कितनी बार मर्दों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया, लेकिन अब उसकी इंतहाई सूरत सामने आ गई कि मर्द कवाम है। आज जो परवरिश का अंदाज है, माएँ बच्चों को, बेटों को कवाम बना के नहीं पाल रही। पीछे भी जिक्र हुआ आपसे कि बेटों को इस सोच के साथ पालिए कि ये कल के शौहर और कल के बाप है। जब मर्द अपने माओं के साथ हेल्प करते हैं ना, तो वो बीवियों के साथ भी करते हैं, और जो बेटे अपनी माओं का ख्याल रखते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, तो वो बाद में फिर बीवियों और बच्चों की भी खिदमत करते हैं। और वो जिनको पहले माएँ और बहनें पाल रही होती हैं, वो फिर बाद में बीवी को पालना पड़ता है। और इसी तरह से बाज़ दफ़ा देखा गया कि मर्द बिल्कुल बेकार और नखट्टू हो जाते हैं, भंगी चरसी शराबी बन के घरों में बैठते हैं, और जो बीवियां बेचारी ना सिर्फ ये के काम करें बल्कि आके डांट भी खाती हैं। ऐसे मर्द कभी अपनी बीवियों की इज्जत नहीं करते, बल्कि और गिल्ट में जाके इस ऐसे कमतरी को छुपाने के लिए पाबंदियाँ लगाएंगे, शक करेंगे किधर गई थी, किसके पास गई थी, किधर तेरी दोस्ती है, पैसे किधर गए, किधर से आए। छोटी छोटी बातों पर मर्द औरतों को पूछते हैं। इन सब से बचने का अल्लाह ने खूबसूरत तरीका दिया कि मर्द को कवाम बनाओ। लफ्ज़ कवाम अरबी ज़ुबान में इतना ज़ुमानी लफ्ज़ है कि इसमें सारी की सारी चीज़ें आती हैं। कवाम या कय्यम ऐसे शख्स को कहते हैं जो किसी फ़र्द या इदारे या निज़ाम के मामलात को दुरुस्त हालत में चलाए, इसकी हिफाजत करे, निगहबानी करे, ज़रूरियात को पूरा करने वाला। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ मैनेजर आ सकता है एक खास हद तक। मुतदब्बिर, मुतकफ़िल, कफालत करने वाला, तदबीर करने वाला, यानी मर्द के ऊपर अल्लाह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। जिस्मानी साख भी उसकी ऐसी होती है, अल्लाह ने उसका हौसला बुलंद रखा, जिस्म स्ट्रॉन्ग है। तो दो वजूहत है इधर कवामियत की, जिस्मानी फजीलत, जज्बाती नहीं होते, गुस्से में आ जाएँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा वक्त देख लेते हैं, इल्ला माशाल्लाह। जो जिस मर्द को गुस्सा आए और वो काबू ना पाए ना, समझ लीजिए कि उसकी तरबियत का नक्शा है, बैकग्राउंड में कोई ना कोई बात होगी। कवाम बेटे पैदा करें ताकि कवाम शौहर बने। बचपन से लड़कों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, सख्त जान बनाएं, उनको वो चीज़ें सिखाएं जिससे उनकी एनर्जी यूज़ हो, उनको आउटडोर गेम्स का आदि करें। हम मुश्किल क्या पड़ गई कि जब हमारे बच्चों का वज़न बढ़ता है ना, तो फिर भी जाके हम उनको किसी जिम में ही छोड़ आते हैं, या वो खुद चले जाते हैं बेचारे, या डाइट पे डाल देते हैं। गैर सेहतमंद, अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग है। मर्दों का क्या काम है जिम में जाने का, कोई वहाँ का माहौल होता है जाने वाला? गुजरते हुए नज़र पड़ जाए तो उस बिल्ला पढ़ने को दिल करता है। किस हुलिये में लोग गए होते हैं, क्या वहाँ एक दूसरे पे नज़रें नहीं पड़ती? और जहाँ मिक्सिंग हो, और जहाँ सबके पसीनों की बू आती हो, वोमिट हो जाए सोच के, और जहाँ इतनी घुटन के म्यूज़िक भी और कुछ भी है। इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालें, हेल्दी वे ऑफ लिविंग। ये अल्लाह ने बाहर इतने बड़े बड़े जिम रखे हुए हैं, सब्ज़ घास आपके लिए फैलाई, जो वॉक करके आपको मज़ा आएगा, जो ओपन एयर में आपको जाके मज़ा आएगा, इसका तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला से वो स्टाइल ऑफ लिविंग मांगिए जिसमें आपका फितरत से रास्ता खुले ना। रात को एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस किया मैं आप साथियों से, वैसे भी शेयर करने वाली थी, भूल ना जाऊँ इसलिए बीच में यह जिक्र कर देती हूँ। हम लोग इस दफ़ा बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे पास लंदन में इस साल बहुत अच्छे कारी आए हुए हैं सऊदी अरब से। एक ग्रुप है जिन्होंने कुछ कारी को बुलाया, एक का नाम लूँगी तो आने वाले तो बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, आप तो पता नहीं होते हैं कि नहीं। अबू बकर शात्री, आपको पता है कि वो आजकल लंदन में, आज शाम को तो उनका वो नमाज तरावी वेम्बली मस्जिद है सेंट्रल मॉस्क, तो इसमें आज अबू बकर शात्री नमाज और तरावी कराएँगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन यह है कि ये तो आज की बात है, आज तो मैं ख़ुद भी इधर आऊँगी, लेकिन जो दूसरी जगह है वो बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मैंने आप सबको कल इतना मिस किया कि कुछ साथियों की वजह से हम वहाँ पहुँचे, तो कोई एक ग्रुप है जिन्होंने सऊदी अरब से कुछ कारियों को बुला के तो ओपन एयर में बीच में टेंट और कनोपी के साथ इंतज़ाम किया, और जब हम वहाँ से गुजर के जा रहे थे दरख्तों के तनों के साथ छोटे छोटे बल्ब लगे हुए थे, तो इतना खूबसूरत मंजर था। ये साउथ यहाँ से वेम्बली से शायद हम 8 से 9 मिनट में पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हर चीज़ सुन्नत के मुताबिक। इतना दिन के बाद मज़ा आया मुझे, नमाज भी वक्त पे, तरावियाँ उन्होंने पूरा सपारा, हमें 8 तरावियों में भी पढ़ाया, और किरत कितनी खूबसूरत, और उसके बाद फिर वितर तक हम इमाम साहब के साथ रहे, और मज़े की बात जो बताने लगी थी कि ओपन एयर से गुजर के जा रहे थे, तो मैंने तो जगह भी अपनी डोर के पास ली कि थोड़ा सा फितरत से जुड़े। ये बंद जगहों पे रहना, घुटन और एसी और हीट में रहना, ये भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। तो याद रखिए, जितना ज़्यादा हम अपने बच्चों को हेल्दी एटमॉस्फेयर का ज़रिया बनाएंगे, अपने जवान बेटों को आगे करें, ये चीज़ें छोटी छोटी ईमान, ये मैंने इन सबको याद किया, इनको पता भी नहीं होगा, ये पता नहीं उधर उस वक्त ज़ाहिर कहीं और होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि जब यूथ भागती है ना इन रस्तों में, अपने अपने अबुओं को साथ लेके आएँ, अकेले ना आ जाएँ कि अबू मैंने जाना है, ज़िद करें फारिया आज अपने अबू से, मुझे ले कर चलें, आप भी ज़िद करें। کہیں گے یہ نیا سبق پڑھ کے آ گئی آج. لیکن یقین کریں بیٹیاں جو کام کرا سکتی ہیں وہ بیویاں نہیں کرا سکتی, یہ سچ ہے. آپ سب اپنے والدوں کے لیے اس طرح کی مشعل راہ بن سکتی ہیں. لاڈ رو پڑے, گلے لگ جائیں, پیچھے سے پکڑ لیں, ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لیں, ابو نہیں مجھے چاہیے, ابو چلے, ابو میں نے آپ کے بغیر نہیں جانا, ابو تو رو پڑیں گے آپ کا یہ لاڈ دیکھ کر. ہم پتہ نہیں کیوں اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہرحال ہدایت دے اور گھروں کا ماحول خوبصورت بنائے. دیکھیے میں کہتی ہوں میری زبان کے جملے اگر جب سے پڑھا رہی ہیں اب تک کوئی نوٹ کرے تو میں کہہ سکتی ہوں میں نے ہنڈریڈس ٹائم اپنے ساتھیوں کو, اسٹوڈنٹس کو, لسنرس کو یہی سبق دیا کہ اپنے گھروں کو پرسکون بنائیں. گھروں کو چھوڑ کر اوور لک کر کے ہم کبھی پوری سوسائٹی خوبصورت نہیں بنا سکتے. اب آپ کہیں گے ہمیں ملے ہی اچھے نہیں ہیں, تو پھر آپ بھی تو اچھی نہیں ہے نا کہ آپ نے ابھی تک ان کو نہیں ٹھیک کیا. آپ کے اندر بھی تو کوئی گن ہونا چاہیے. اور روئیے, تڑپیے, اللہ سے مانگیے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جن کو بھی نہیں ملے وہ یہ دعا کریں کہ اللہ متقی دینا, اور جن کو مل گئے وہ یہ کہیں کہ اللہ ان کو ہم سے متقی بنا. وجالنا للمتقین اماما, اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا. تو جب ہم دین سچا لے کے جائیں گے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کی کشش نہ ہو. میں نہیں مانتی اس کو الا یہ کہ کسی کا پھر مزاج ہی بگڑا ہوا ہو. عام حالات جو ہمارے گھروں کے مردوں کے وہ خراب نہیں ہیں, صرف ان بیچاروں تک علم نہیں پہنچا اور ان کو پیار نہیں ملا. سچی جو بات ہے, آپ سب کی ساسوں کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, آپ کے وہ مرد جو آپ کے دین سے نالہ ہیں, پریشان ہیں, وہ بیچارے محبت ڈھونڈ رہے ہیں. اب پہلے آپ تھوڑی بہت دے بھی دیتی تھی, اب ان کو لگا آپ کلاس کو دینے لگیں, گھر میں باتیں کلاسوں کی ہوتی ہیں. آپ آج جا کے اپنے ہسبینڈ سے کہیں آئی لو یو, آج مجھے آپ سے بہت محبت ہوئی کیونکہ آج میں نے کلاس میں آپ کی باتیں اتنی پڑھی. یقین کریں آپ ان محروم لوگوں کو پیار دیں. بچہ بھی جب پیار نہیں ملتا نا اس کو تو وہ چڑھتا ہے, روتا ہے. یہ جو وہ سختیاں کرتے ہیں, پابندیاں لگاتے ہیں, نظر رکھتے ہیں, صرف احساس سے کمتری ہے. آپ گھر میں ہوں کبھی ان کو پرواہ ہوئی آپ کی؟ سچ بتائیں, وہ تو کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں. وہ تو کبھی گارڈننگ کر رہے ہیں, کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کبھی ایکسرسائز کر رہے ہیں. آپ کو سارا دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی رہتی ہیں. کیوں آپ گھر سے نکلیں تو ان کو تڑپ نہیں لگتی ہے؟ کیونکہ وہ اندر کا ایک ابال آتا ہے. تو بہرحال میں تو جتنا زور لگا سکتی ہوں اتنا ہی لگاؤں گی. اللہ تعالیٰ سب بہنوں کے شوہروں کو ان کے دین دنیا کے معاون بنا دیں. آپ سب کے شوہروں کو اللہ آپ کی دل کی ٹھنڈک بنا دیں اور گھروں کے نقشے بدلیں. بچوں کو ساتھ لیں. کیوں ان غریبوں کو آپ نے پنجروں میں بند کیا ہوا ہے؟ بوڑھے باپ کو اگر اللہ نہ کرے تکلیف ہو جائے, بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا. ہم ماں باپ سے اتنے دور ہو گئے, ہم نے ان کی دعائیں لینی چھوڑ دی. اور دعائیں لے لیں جتنی لینی ہے, یقین کریں یہ دعائیں آپ کو لگیں گی. جب آپ کسی مشکل میں ہو آپ کی ماں زندہ, اس کو کہیں کہ میرے لیے دعا کریں. اور اگر آپ کا کوئی استاد زندہ تو اس کو کہیں میرے لیے دعا کریں. یہ دعاؤں سے جو دروازے کھلتے ہیں وہ اللہ کی, یہ ہماری کوششوں سے تو کھل ہی نہیں سکتے. تو بہرحال مرد کی قوامیت کے بعد اب چلتے ہیں عورت کی طرف.